समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। हम में से अधिकांश लोगों के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे ही दूसरे सोशल मीडिया को चेक करते रहना डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। एक आम आदमी हर रोज कम से कम 2 से 2.5 घंटा सोशल मीडिया पर बिताता है। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। दुनिया भर में रह रहे दोस्तों और रिश्तेदारों के सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी है। सोशल मीडिया एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन को बढ़ाकर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ये असर किशोरों और युवाओं पर ज्यादा होता है। सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर आप इस पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और अवसाद, निराशा, अकेलापन और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप सोशल मीडिया के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करें। आपके और आपके प्रियजनों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया आपके मानसिक और ओवरऑल हेल्थ किस तरह प्रभावित कर रहा है। श्रोताओं, सोशल मीडिया के असर से आज हम सब जूझ रहे हैं। इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और हम किस तरह खुद पर नियंत्रण रखकर इसका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर और मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
नमस्कार सभी को।
सबसे पहले डॉक्टर राजेश, हम ये जानना चाहेंगे कि किस आधार पर आप ये कहेंगे कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है।
देखिए, इसको समझने के लिए हमें स्वास्थ्य की परिभाषा को समझना होगा, और जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा कहते हैं तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग उसका अभिन्न अंग है। और कहने का मतलब यह है कि जो उसका मेंटल कॉम्पोनेंट है वो उसी का पार्ट है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा ज्यादातर ध्यान फिजिकल हेल्थ पे होता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उसमें मेंटल और सोशल वेलबींग उसका पार्ट है। फिर अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति जो है मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, तो वो भी परिभाषा है WHO की। उसमें 4 कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कोई व्यक्ति जो है वो अपनी क्षमता को पहचाने, हु नोज हिज और ओन पोटेंशियल। दूसरा ये है कि जो डे टू डे स्ट्रेस से जूझ सके, जो उसे लड़ सके, जो उससे सामना कर सके। तीसरा है हु कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, ये तीसरा है। और चौथा वो है हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड द नेशन। तो आप कहेंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में बहुत चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, आपका काम, आपका स्ट्रेस, आपकी क्षमता, आपकी कंट्रीब्यूशन। अगर हम कहें कि कौन व्यक्ति जो है स्वस्थ है मानसिक रूप से, तो जो व्यक्ति जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करता हो, जो अपने आप से खुश है और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपने रोजमर्रा का जो जीवन है उसे लड़ रहा है, उससे जूझ रहा है, एक प्रकार से खुशी जो है दूसरों को भी बांट रहा है, और उसकी अपनी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, अपने जीवन के लाइफ चॉइसेस ले रहा है वो, और तो ये सारी चीजें अगर हैं उसमें, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ होना इम्पॉर्टेंट ये है कि उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का बारे में बहुत चर्चा होती है, जिसमें और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब अगर कोई परेशानी भी है तो ये समझिए कि आप उसे लड़ सकते हैं, आप उससे ऊपर आ सकते हैं और आप उसको जूझ सकते हैं। ये ना समझिए कि जीवन का वो अंत है वो, और लेकिन कैसे आप उससे बाउंस बैक करते हैं, कैसे उससे लड़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
श्रोताओं, स्टूडियो के फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नंबर है 2331444 और 2342105050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर पीयूष, सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों के फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है?
देखिए, सोशल मीडिया अलग अलग तरह से ये होता है, जिसमें कि मूल तौर पे जो स्क्रीन टाइम होती है उसके कारण जो है वो हमारे फिजिकल हेल्थ पर बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसमें प्रमुख है नींद में दिक्कत का होना। नींद में दिक्कत में होने के कारण जो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, और फिजिकल एक्टिविटी नींद के कम होने के कारण जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ जाता है। और लोगों में देखा गया है कि सबसे पहले ये आपकी अनिद्रा, हाइपरटेंशन, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, इन सभी चीज़ों को में से ये पहले स्तर पर आता है। दूसरे स्तर पर जबकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, तब उस क्षेत्र उसके उसकी वजह से जो मोटापा और उसके कारण जो बहुत सारे जो रोग होते हैं वो आपके शरीर में आने लग जाते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होने लग जाता है, और साथ ही साथ जो आपने एक फैटी लीवर, जिसमें कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और इसके साथ साथ जो डायबिटीज जो है उसके भी कंट्रोल होने के जो कंट्रोल से जो है वो बाहर जाने लग जाता है।
हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं सिरसा से, राजेंद्र। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार कनकलता जी, और डॉक्टर राजेश सागर जी को और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी। और डॉक्टर डॉक्टर साहब, तीसरी बार बात बात हो रही है, तो अच्छे कार्यक्रम में आते हैं, तो आगे भी आते रहें, उनके बारे में यही कहता हूँ। और डॉक्टर राजेश सागर जी से ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल तक के बच्चे, हमारे घर में भी 2 साल का बच्चा है, मोबाइल देखने की बड़ी जिद करता है, तो आने वाले भविष्य में उसके दिमाग पर इससे क्या असर पड़ सकता है? और मैं दूसरा जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, जब गुस्से में होता है इंसान, तब कोई अनहोनी ना हो, तब अपने मन पे और कैसे काबू पाए, इसके बारे में जानना। सवाल तो बहुत है, लेकिन ये 2 ही सवाल। नमस्कार जी।
देखिए, 2 सवाल पूछे हैं। एक तो ये कि बच्चा 2 साल का है, वो इस्तेमाल करता है मोबाइल फोन, तो ये कहना चाहेंगे कि कुछ देशों में खासकर ये एक प्रकार सा प्रोहिबिशन होता है कि 3 साल से कम बच्चों को आप कोई भी गैजेट या कोई भी ऐसी चीज ना दें, और ये कोई गाइडलाइंस हैं कुछ देशों में जहाँ पे 3 साल से कम बच्चों पे ना हो, और उसके बाद जो है तो ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन हमें मालूम है कि बहुत बच्चों को इसका सेवन किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बार हमने व्हाट्सएप पे कुछ देखा है, देखिए सोशल मीडिया पे ही, जहाँ पे बच्चे को छोटे को दिया है तो उसने एक चीज को पकड़ा है, उसने कान में लगाया है उसको, उसे लगा ये मोबाइल फोन ही है, जबकि वो खाने की चीज थी वो। तो कहने का मतलब कि इतनी सारी इतना प्रभाव है कि बच्चों पे भी पड़ा है, और ये देखा गया। और कुछ देशों में तो मैं कहूंगा सोशल मीडिया 16 साल से कम में प्रोहिबिट किया हुआ है, इस पे कानून बना है ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी देशों में भी हो रहा है, और इस पे काफ़ी चर्चा भी हो रही है, और काफ़ी डिस्कस हो रहा है कि क्योंकि इसके प्रभाव नेगेटिव इतने हैं जिसके, और चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इतने छोटे बच्चे में इसका इससे रोकना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा सवाल ये जो कहा है कि चिड़चिड़ापन है तो उसमें क्या
ना हो जाए, बहुत गुस्सा आता है, नहीं तो कोई अनहोनी ना हो गुस्सा जाए, कैसे और कंट्रोल करें?
हाँ, तो देखिए, गुस्सा इंसान की प्रवृत्ति है। आप ये कहें कि किसी को गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन इमोशन है, गुस्सा आएगा, और एग्रेशन इज पार्ट ऑफ सर्वाइवल ऑल्सो, और ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है गुस्सा होना। तो एक बात तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं आएगा गुस्सा, तो कहने का मतलब है कि वो एक पार्ट है, जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब ये बहुत एक्सेसिव हो जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाए, तब समस्या हो जाती है। और गुस्से का मतलब यही है कि जब किसी इंसान को गुस्सा है तो उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम उससे तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा अगर किसी में भी गुस्सा आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे रोड रेज के बारे में बहुत बात होती है, जहाँ पे आप गाड़ी से गए और वहाँ पे कुछ हो गया, तो आप एक दूसरे को, यहाँ तक कि नौबत आती है, एक दूसरे को मारते जानते हैं आप, इवन पीपल हैव टेकन पिस्टल एंड किल्ड ऑल्सो। सो कहने का मतलब एक उस वक्त जो है अपने रिएक्शन को रोक लें, इसमें अलग अलग साइकोलॉजिकल टेक्निक है। कुछ कहते हैं कि आप 20 से यू काउंट बैकवर्ड्स, कुछ कहते हैं कि अपने हाथ में रबड़ बैंड बांध कर उसको बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप उस चीज को होल्ड कर लें। तो गुस्से की एक खास बात यह है कि गुस्सा थोड़ी देर के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है। तो आप रिएक्ट ना करें, और अगर बहुत बार बार आ रहा है तो हो सकता है आपको समस्या हो, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या और भी प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें गुस्सा, एग्रेशन, वायलेंस ये सिम्टम होता है। ये परिवार हमारे पास लेकर आते हैं, कहते हैं इसको गुस्सा बहुत आता है। तो अगर वैसा है तो फिर आप जरूर हेल्प लीजिए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को गुस्सा नॉर्मल प्रवृत्ति होता है, हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, किसी परेशानी में हो, उस वक्त आया है, क्योंकि ये एक इमोशन का हिस्सा है। जैसे हम उदास होते हैं, खुश होते हैं, उसी प्रकार से गुस्सा भी है।
अत्यधिक नहीं होना चाहिए और दूसरों को
एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी कभी लोग चीजें तोड़ देते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं या अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। गुस्सा जो है उसमें अपने आप, तो ये चीजों का परहेज करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो प्लीज टॉक टू समवन, अपने परिवार से बात कीजिए और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए अगर बहुत ज्यादा इसमें समस्या है तो।
रायबरेली से रमा शंकर जी फोन लाइन पर हैं। रमा शंकर जी
नमस्कार
जी। जी बोलिए
सर। मैं ये पूछना चाहता था कि सोशल मीडिया के द्वारा, अभी बच्चों पे तो जिक्र हो ही रहा था, मगर वयस्क और वृद्ध लोगों के ऊपर भी इसका निगेटिव जो है असर पड़ता है, तो इसका निवारण क्या?
जी जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो ठीक उसी तरह से जो सोशल मीडिया हमारे पास जहां बिजनेस और इन चीजों को बढ़ाने का एक तरीका है, तो उसके साथ साथ जबकि इसका उपयोग हम लोग नकारात्मक इमोशंस के लिए करते हैं तब ये हमारे लिए तकलीफ की वजह बन जाती है। जैसे कि सोशल मीडिया में अक्सर ये देखा गया है कि लोग शोशाबाजी करने के लिए जो अपनी जिंदगी के जो दिखावटी वाले पहलू जो होते हैं उन्हें जब भी ये दिखाते हैं तब इनके कारण ज्यादातर समस्याएं होती, न केवल देखने वालों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि जो लोग दिखाते हैं उन पर भी दबाव आता है। इनके प्रश्न पर अब हम आते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग कैसे इस पर बच सकते हैं, तो इस पर तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं ये इनके जो कारण के निवारण को हम लोग इस तरह से देखते हैं, व्यक्ति खुद पर कैसे नियंत्रण कर सकता है। तो व्यक्ति खुद पर अपने आप को इस बात को समझे कि जो कोई भी उसके आसपास जो भी उसके इमोशंस हैं, जिन बातों को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, तो वो ये समझे कि ऐसे पोस्ट करने से समाज का या परिवार का या राष्ट्र का क्या भला होगा, तो तभी वो उन बातों को पोस्ट करे। नंबर वन एक ये हो गया। नंबर दो, आपको खुद के ऊपर जो फिजिकल हेल्थ के लिए जो जरूरत है उन बातों को ध्यान में रखने के लिए आप एक नियम बना लें कि शाम को घर में आने के बाद आप कोई सोशल मीडिया को नहीं देखेंगे, नंबर वन, क्योंकि इससे आपको आपकी रात की नींद जो है वो खत्म हो जाती है। आपके मोबाइल के अंदर में एक ऐप रहता है जिसमें कि स्क्रीन टाइम का उसमें अलर्ट रहता है, तो आप उस अलर्ट को ये जगा दें और आप उसमें ये देखें कि आप कितने समय तक आपका स्क्रीन टाइम रह रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में नहीं है जिसमें कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर आपको रहना पड़ रहा है, तो उन चीजों को देखते हुए आपके जो गैर जरूरी जो स्क्रीन टाइम है उसको आप शून्य के लगभग में कर दें, नंबर दो। नंबर तीन ये हो गया कि जब कभी भी आपको इससे बचने की आवश्यकता हो तब आप अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव काम में, जिसमें नंबर वन है एक्सरसाइज के लिए, अगर आपको आसपास में अगर खुले मैदान नहीं मिल पा रहे तो घर में ही अलग अलग तरह के डांस हो गए, जुम्बा हो गए, योगासन हो गया, इन सभी चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्यक्ति के बाद अब हम परिवार पर जाते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से बचे, नंबर वन, एक दूसरे के लिए मदद के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह बढ़े। जैसे कि अगर परिवार के चार पांच सदस्य हैं तो वो मिलकर इस बात को तय कर सकते हैं कि ठीक है अब हम लोग कोई भी चीज सोशल मीडिया के बारे में बातचीत कम करेंगे और हम लोग जो गैर दूसरी जो स्क्रीन टाइम के अलावे जो दूसरी चीज है उसके साथ कर सकते हैं। एक बड़े स्तर पर देखें तो आपके जो घर के परिवार के बजाय जो आपके बिल्डिंग सोसाइटी है उसमें आप एक रूल जैसा बना सकते हैं कि आप कुछ चीजों को अगर को आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है प्रकाशित न करें। नंबर एक, और उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन इन्फॉर्मेशन को आप बेवजह जो है फॉरवर्ड न करें। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो तथ्यात्मक तौर पे जो गलत चीजें जो हमारी इमोशंस को भड़काते हैं वैसे वैसी चीजों को भी हम लोग जो है वो आंख बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसका हिस्सा ना बने।
मैं देखा जा रहा है बच्चों में, युवाओं में जो बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग बहुत ज्यादा,
जी जी जी,
लेकिन फिर भी बच्चे से अलग नहीं होते हैं।
देखिए बच्चों में यह बात जैसा कि शुरू में अभी प्रताप सर, ये सॉरी राजेश सागर सर ने भी जो अभी ये बात कहा, तो उन्होंने ये इस बात के लिए इस बात को समझना है कि एक आयु से कम के बच्चों को तो ये बिल्कुल ही प्रतिबंधित होना चाहिए। नंबर एक ये जरूरी है कि जब ये जो माता पिता जब बच्चे ये परिवार को बढ़ाने की बात करें तो बिल्कुल छोटे में जो है वो ये इस बात को समझें कि उन्हें किसी भी तरह से बच्चे को खाना खिलाने के लिए या पेसिफायर के लिए जो है वो मोबाइल को सामने न चला दें, तो इन बातों के लिए ये जरूरी है। और बच्चों में जो शेमिंग और इन सभी चीजों का है, जैसे कि हर चीज के लिए एक आयु होती है, जैसे कि हम लोग जैसे एक तरह से कहते हैं जैसे शराब के लिए भी जो 25 साल से कम उम्र के लोगों को जो है के लिए ये प्रतिबंधित है, तो एक आयु जो अवयस्क बच्चे हैं उनका जो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो बढ़ता हुआ जो जो प्रेजेंस है उसको कर्टेल करना बहुत आवश्यक है।
महाराष्ट्र सोलापुर से प्रकाश राव हैं। प्रकाश जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
हाँ, मैं प्रकाश राव सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ कि बच्चे जो पबजी जैसे गेम देखते हैं वो सुसाइड होते हैं, वो मेंटल होते हैं, उसका भविष्य बर्बाद होता है, उसको पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए?
बहुत सही कहा आपने प्रकाश जी, और आप ही नहीं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चे इस चीज में होते हैं, और इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो जिसमें हम अपना डायग्नोसिस जो बनाते हैं तो इस जो नए उसमें गेमिंग डिसऑर्डर या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर भी एक प्रकार की बीमारी का व्याख्यान किया है, और उसका परिभाषा यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है बहुत समय तक इस चीज में लगा हो और उसके अलावा उसकी अपना खाना पीना उसका कम हो गया हो या बंद हो गया हो या उसकी नींद उसकी कम हो गई हो या बंद हो गई हो, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया हो, तो इस तरह के हम इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये एक क्योंकि उसमें एक प्रकार की लत लग जाती है उस गेम्स की, तो ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको समझा, इसको परेशानी को इसका वर्णन किया, आपने बताया, क्योंकि हम अक्सर इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं, कोई भी इस तरह की समस्या है उसको डिसमिस कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पहले इसको परिवार को ये समझना जरूरी है कि हम इसको समझें, इसको सोचें कि ये एक समस्या का विषय है।
डॉक्टर राजेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी कि परिवार के लोग तो समझते हैं लेकिन जो व्यक्ति खुद इसका शिकार है वो इस बात को मानता ही नहीं कि उसे इसका एडिक्शन है, ऐसी स्थिति में क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मानसिक बीमारियां कई ऐसी परेशानियां ऐसी होती हैं जहां पे व्यक्ति को खुद नहीं मालूम होता कि वो इसका शिकार है या उससे बीमार है, और ये अनहोनी बात नहीं है, और क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम होता, क्योंकि कभी कभी तो कहता है आप नहीं आप बीमार हैं, मैं तो नहीं मैं तो ठीक हूं, तो कहने का मतलब उसको उसकी इनसाइट नहीं होती है उस चीज को लेकर। लेकिन उससे हमें हारना नहीं चाहिए, अगर वो है उससे बातचीत करें, उसको एक नया जरिया दें, उसके लिए जैसे डिस्कस किया है फिजिकल एक्टिविटी का माहौल दें उसको, जहां उसको एक एंजॉयमेंट है या जो उसकी हॉबीज हैं। कई बार जैसे हमारे पास जब आते हैं ऐसे बच्चे, हमारी जैसे क्लिनिक होती है बच्चों की या यूथ की, तो उसमें हम ये सब बातें जिक्र करते हैं जहां पे उनके कुछ स्ट्रेस होते हैं या उनकी परेशानियां होती हैं या उनकी परेशानियां टीचर से हैं या स्कूल से हैं या उसके पढ़ाई को लेकर कुछ उसका समस्या है, तो ये सारी चीजें जो गेम में इसलिए आते हैं कि उसको अवॉइड करने के लिए, उनको लगता है कि यहां उनका सोले से या उनका उनको लगता है कि मेरे दोस्त नहीं है तो मैं अपने दोस्त यहां बना सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है उसके अपने रियल दोस्त ना हो लेकिन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उसके 100, 200, 500 दोस्त हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है ये समस्या कॉमन है और इसका आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है।
मोहन पासवान दरभंगा बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कठिन मैडम
जी, मोहन जी बताइए।
सर, देश दुनिया के सोशल मीडिया का प्रभाव देश दुनिया के लोगों के मानसिक पर दुष्प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण बच्चे नशा का शिकार और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तथा उचित माहौल नहीं मिलने के कारण डॉक्टर साहब द्वारा कहे गए निर्देश को भी नहीं मानते। कैसे माहौल से इसको ठीक किया जा सकता है मैडम? सर
जी, इसके लिए जैसा हमने शुरू में भी बताया कि ये इसके लिए कोशिश सभी सभी लोगों को करनी होगी। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम बाकी दूसरे स्पीसीज की तुलना में ज्यादा इसलिए इवॉल्व हो पाए क्योंकि हमने अपने अंदर की सामाजिकता को पहचाना। तो हमें फिर से अपने रूट्स की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, जिसमें कि सोशल मीडिया के बजाय हमें सोशलाइजेशन के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के दुखों को महसूस करना, उसे बांटकर कम करना और खुशियों को बांटने की आवश्यकता ये है। ये सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि ये सोशल मीडिया, ये भले ही हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन यह न्यू नॉर्मल नहीं बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड न्यू डिजीज है। और जिस दिन हम पहले इस बात को जानेंगे कि एक बीमारी की तरह है, तब हम लोग समाधान की तरफ, इसे दूर करने की तरफ पहला मजबूत कदम उठा पाएंगे। अब ये कि इससे कैसे हम अलग करें, तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा लगे कि लोगों को ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए एक और अधिक स्ट्रेस का कारण न बने। टोका टिप्पणी या डांटने फटकारने के बजाय इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर सागर ने भी बताया कि ये दूसरी चीजों से जुड़ा हो सकता है, शायद उसके जीवन का कोई हिस्सा दुखी हो या स्ट्रेस या एंग्जाइटी या ऐसे दूसरे चीजों के साथ वो जूझ रहा हो, इसकी वजह से वो गेमिंग या सोशल मीडिया की तरफ वो जाने लग जाता है। तो इसे ये पहचाने, और जो इस तरह की तकलीफें जो हैं, ये जो चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या और भी कोई दूसरी मानसिक रोग हो, ये डायबिटीज हाइपरटेंशन की तरह बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर आप इस बात को समझें, रिकॉग्नाइज करें और सही विशेषज्ञ के पास पहुंचे। नंबर एक। नंबर दो, जो पॉजिटिव जो आपके साथ जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आपके वो फिजिकल एक्टिविटी हो, खेल कूद का माध्यम हो, चाहे गीत संगीत हो या कला की वो विधा हो जिसमें कि आप रुचि रखते हैं, इन सबों के साथ जब आप अपने मन को लगाएंगे तो इन नकारात्मक चीज के प्रति आपका ध्यान धीरे धीरे खत्म होता जाएगा।
गिरीश देशमुख हैं पुणे महाराष्ट्र से। गिरीश जी।
हाँ, नमस्कार। आई हैव टू पॉइंट्स।
या प्लीज गो अहेड।
हाँ, माय फर्स्ट पॉइंट इज बहुत सारे लोग जो है, मैंने पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से मोबाइल मिलने लगे हैं तो माँ बाप ही जो है वो गाड़ियों पर बच्चों को लेकर जाते हैं और सामने मोबाइल पर बातें करते हैं, और बच्चा जो है ये
ये कहना चाह रही है कि बच्चों में जो आदत पड़ती है मोबाइल की, वो माँ बाप की वजह से।
बिल्कुल सही, बहुत 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 अच्छी बात कही है गिरीश जी ने ये, और ये हम जरूर बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम इसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पेरेंट्स को दे हैव टू सेट अ बेस्ट एग्जाम्पल टू देयर चिल्ड्रन कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा, एक बात बता दें, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, यूथ बहुत बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए बच्चे हैं तो डिसमिस कर दें हमारी बात, तो ये तो बच्चा है, ऐसा नहीं है, वो दे आर हाईली इंटेलिजेंट, दे नो, और वो कीन ऑब्जर्वर हैं, तो हम जो करते हैं वो बच्चों को मालूम है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि हम जो करें सोच समझ कर करें, और जो भी करें, जैसे अगर मोबाइल यूज हो रहा है या एक्सेस स्क्रीन टाइम हो रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है उन पर पड़ता है, तो उसको हमें सोचना है कि कैसे अवॉइड करें या कैसे कम करें, क्योंकि हमें बेस्ट एग्जाम्पल बनना होगा अगर हम किसी बच्चे में चेंज चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं।
पेरेंट्स को खुद भी अनुशासित होना पड़ेगा, तभी वे बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि वे अनुशासित
एक रोल मॉडल की तरह।
बिल्कुल
बिल्कुल,
सिर्फ उपदेश देने से कुछ नहीं होगा
जी।
शिवराम हैं दिल्ली से।
हाँ, नमस्कार जी। जी
मैं शिवराम सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से।
जी
मेरा भी लड़का 24 साल का है लेकिन वो गेम में रहता है जैसे पबजी गेम है यहीं पर बिजी रहता है वो हमारी बात सुनता नहीं कोई भी बात बोलते हैं तो उसको बड़े उल्टे पूट पटांग ढंग से जवाब देता है हमें भी मैं ब्लाइंड हूँ फिर भी 24 साल का फिर भी वो बात नहीं सुनता बिल्कुल भी गेम में बिजी रहता है ज्यादातर तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए।
जी जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्नों में भी ये बताया इस बात की चर्चा करी कि इसके दो तरह से हमें इसका निदान ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस वजह से वो गेम की तरफ जा रहा है। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति में जो इस तरह की जो समस्या होती है वो किसी न किसी दूसरे तरह के जो और तकलीफ है जिसमें कि डिप्रेशन एंग्जाइटी स्ट्रेस ये कुछ कॉमन है कुछ तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनके साथ साथ ये जुड़ा रहता है। नंबर एक। नंबर दो, जब इस तरह के जो एक्सेसिव यूज की वजह से जो एक लत जो लग जाती है जिसे हम लोग एक एडिक्शन का भी नाम देते हैं तो इन दोनों में अलग अलग ढंग से काम किया जाता है। जब एडिक्शन के बाद डी एडिक्शन के अपने प्रोटोकॉल हैं इसके लिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप किसी भी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सबसे पहले मिल लें और उनकी उनसे मिलने के बाद वो आपको इसमें सही सही तरीके से ये बताएंगे। लेकिन फिर भी आम बोलचाल और आम सलाह के तौर पर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि उसे समझने की कोशिश करें उसको तनाव को बढ़ाने के बजाय। कई बार बच्चे जो इस युवा जो होते हैं उन्हें ज़्यादा टोका टिप्पणी करने के बाद इन बातों को और ज़्यादा निगेटिव रूप में ले लेते हैं। ये समझने की कोशिश करें कोई एक माध्यम कोई एक जरिया ढूंढें जिसके द्वारा उन तक उनकी भावनाओं तक पहुंच सके और उनके अंदर ये समझाने की कोशिश करें कि ये आम दूसरी बीमारियों की तरह भी ये भी एक बीमारी है और इसे पहचान करके इसका सही इलाज संभव है और इसके लिए विशेषज्ञ से मिले।
डॉक्टर राजेश, बीमारियों की बात चल रही है तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में कोई फर्क है?
बहुत सही सवाल है बल्कि इसको शुरू में हमें डिस्कस करना चाहिए था। मेंटल हेल्थ की परिभाषा तो मैं दे चुका हूं क्योंकि ये हेल्थ है ये और अक्सर इससे हम पॉजिटिव हेल्थ भी बोलते हैं या जहां पे जैसे मैंने चर्च बताया आपको कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप कितने खुश हैं आप कितने एक्टिव हैं तो ये सारी बातें जो है मेंटल हेल्थ में आती हैं और जो WHO की परिभाषा भी बता चुका हूँ कि वन हु नोज हिज ओन पोटेंशियल, दूसरा स्ट्रेस से कैसे लड़ना है, तीसरा आप काम कैसे कर रहे हैं कैसे प्रोडक्टिवली और चौथा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन के लिए सोसाइटी के लिए। ये हमारी नहीं WHO की परिभाषा है मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल इलनेस जैसे वर्ड आया इलनेस मतलब बीमारी, जो बीमारी है जो खासकर तीन चीजें हैं जहां पे आपके थिंकिंग में प्रॉब्लम हो या आपकी सोच या आपकी इमोशंस में प्रॉब्लम हो या आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो। इट्स अ इलनेस जहां पे आपकी इमोशंस थिंकिंग या बिहेवियर तो इसमें अगर समस्या है तब ये इलनेस का रूप होता है। ज्यादातर डिप्रेशन एंजाइटी ये और साइकोसिस जो काफी सीवियर मेंटल इलनेस में आती हैं तो ये सारी अलग अलग किस्म की बीमारियां इलनेस। लेकिन मुख्य रूप से ये मानना बहुत जरूरी है और अक्सर हम ये डिस्कस करते हैं कि जब एंजाइटी का मतलब ये नहीं, अगर आपको एंजाइटी हो रही है आप इंटरव्यू देने गए हैं एंजाइटी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है क्योंकि वो हमारा एक नॉर्मल रेंज होता है जहां पे हम एंग्शियस हो सकते हैं। लेकिन डिसऑर्डर होने के लिए बीमारी होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है जो डिस्ट्रेस कि हमें कितना कष्ट है उस समस्या को लेके चाहे वो एंजाइटी हो, दूसरा डिसफंक्शन। कहने का मतलब है कि आप एंजाइटी की वजह से आपने इंटरव्यू देना ही नहीं जा रहे आप या आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो या आप इतने उदास हैं कि आपने ऑफिस जाना बंद कर दिया या आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया तब वो बीमारी का रूप होता है। तो कहने का मतलब है कि जहां तक हम एंजाइटी या उदासी क्योंकि ये जीवन का अभिन्न अंग है अगर कुछ चीज गलत होती है तो हम उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी है या क्लिनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन हम तभी कहेंगे जब वो दो हफ्ते से ज्यादा है या उसमें एक सिम्टम से नहीं होता कम से कम चार सिम्टम हो उसमें और उसके साथ साथ उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो तब वो बीमारी का रूप लेता है। तब यही फर्क है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में या मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर में।
डॉक्टर पीयूष, एक सवाल जिसका छोटा सा जवाब मैं चाहती हूँ कि क्या बच्चों में ऑटिज्म के मामले बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, ये भी एक रीजन है?
देखिए, इस वजह से ऑटिज्म को कंट्रोल करने में एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से होता है, ऐसा कहना मुश्किल है।
अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यंग यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार ठीक 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।